नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। छोड़ के तेरी चौखट को यीशु, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी कहानी लिखी है, खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी की जलती धूप से बचने को क्रूस से छाऊं कहां, क्रूस से छाऊं कहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। पापों को धो दे क मुआफी मोहब्बत और अब जीवन पाऊं तो पाऊं कहां, पाऊं तो पाऊं कहां, कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप निश्चित रूप से परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि आत्मिक रूप से मरे हुओं के लिए अब समय आ गया है कि मसीह की वाणी अर्थात उसका सुसमाचार सुने, क्योंकि विश्वासियों को न्याय के दिन उनके कामों का प्रतिफल मिलेगा, परंतु जो मसीह पर विश्वास न करे उन्हें श्वेत सिंहासन के न्याय के दिन दंड दिया जाएगा। हमने यीशु के वचनों में यह भी पाया कि पुराना नियम यीशु की गवाही देता है, अतः हम उसका त्याग नहीं कर सकते हैं, वह नए नियम की नींव है। तो आज हम उसे आगे अपने अध्ययन को बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आइए हम सब परमेश्वर के निकटता में आए और उसे सहायता मांगे ताकि आज के इस वचन के अध्ययन के द्वारा हम उसकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और उससे प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आज आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, उस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमारे आत्मिक एकाग्रतापन को खोल दें ताकि प्रभु जब हम आपके वचन को बैठ करके सुनते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवित वचन हमारे हृदयों से बोलें और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आज के वचन के द्वारा आप हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को बहुतायत से आशीषित करें। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो चिंता और परेशानियों में हैं, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, नौकरी को लेकर और घर की समस्याओं को लेकर जो चिंतित और दुखी हैं, पिता परमेश्वर उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें ताकि वे अपने जीवन में आपके वचन के द्वारा शांति को प्राप्त कर सकें, आप पर भरोसा रख सकें और इस बात को जानने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, चाहे उनके माता पिता, भाई बहन, उनके मित्रगण उनकी कोई चिंता नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं क्योंकि आपने उन्हें रचा है और आप चाहते हैं कि वे अपनी बुराइयों से फिरकर वे आपके पास आ जाएं, क्योंकि आप उन्हें उद्धार देना चाहते हैं, आप उन्हें शांति देना चाहते हैं। पिताजी, इस बात को समझने के लिए हमारे श्रोताओं की आप सहायता करें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं, आज के वचन के द्वारा आज हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के इस अध्ययन में हम यीशु के स्वर्गीय अधिकार के दो और चिन्ह देखेंगे। एक वह है जहां वह 5,000 पुरुषों को भोजन खिलाता है और पानी पर चलता है। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 पुरुषों को भोजन से तृप्त करने का यह चमत्कार चारों सुसमाचार के वृत्तांतों में व्यक्त है। यूहन्ना के वृतांत में इस चमत्कार के बाद जीवन की रोटी के बारे में उपदेश देता है। यूहन्ना यीशु के चमत्कारों को चिन्ह कहता है क्योंकि उनमें एक उद्देश्य निहित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 30 और 31 पद में वह उद्देश्य व्यक्त करता है। लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मित्रों, यह महत्वपूर्ण पद इस सुसमाचार वृतांत की कुंजी है। इस चमत्कार से एक सच्चाई उभरती है, यीशु परमेश्वर द्वारा दी गई जीवन की रोटी है। अब हम देखेंगे, यीशु 5,000 लोगों को भोजन से तृप्त करता है जो उसका चौथा चिन्ह है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया। मित्रों, कौन सी बातों के बाद? अध्याय 5 की घटनाओं के बाद वह यर्दन नदी के पूर्वी तट से होता हुआ गलील सागर पर आया। यह अध्याय 5 के 6 महीने या 1 वर्ष बाद की बात है जो उसके क्रूसीकरण से 1 वर्ष पूर्व का समय है। जैसा हम देख चुके हैं कि यूहन्ना अपना विवरण समय और स्थान के अनुसार देता है, वह पर्वों के अनुसार घटनाओं के समय व्यक्त करता है। वह जो स्वर्ग की महिमा त्याग कर आया और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया, वही गलील सागर के निकट चलता था। वह काना नगर गया, नासरत गया, कफरनहुम गया, बैतसदा, यरूशलेम, दिकापुलिस आदि स्थानों में भी गया और इसके बाद वह गलील सागर के पार गया। यूहन्ना लिखता है कि यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। अध्याय 5 में वह यरूशलेम में था जहां उसने बैतसदा के कुंड पर 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया था। अब वह गलील क्षेत्र में है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि दोनों अध्यायों के मध्य अर्थात बीच में बहुत समय बीत गया था। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 6 अध्याय उसके 2 पद में, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। मित्रों, जनसमूह वास्तव में उद्धार पाने की खोज में नहीं था, वे केवल उसके चमत्कारों को देखना चाहते थे। वे उसको इसलिए मान देते थे कि वह उनको रोग से मुक्ति प्रदान करता था। यीशु का उद्देश्य केवल शारीरिक चंगाई नहीं था, वह मनुष्य के मन का प्रभु बनना चाहता था। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 2 उसके 25 में कहता है, उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। मित्रों, वह उन पर अपने आप को निर्भर नहीं करता था, क्योंकि वे केवल उसके चमत्कारों में रुचि रखते थे। हम यूहन्ना 6 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा। मित्रों, आज पर्यटकों को जो पर्वत वे दिखाते हैं वह वास्तव में पहाड़ कहने योग्य स्थान नहीं है। वहां पर्वत है जो समुद्री सतह से 3,000 फुट तक की ऊंचाई के हैं, परंतु यह स्थान अधिक ऊंचा नहीं था। यह कफरनहूम के निकट है और संभवतः वह स्थान है जहां यीशु ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया था। यीशु वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गया। फसा का पर्व निकट था। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 6 उसके 5 पद में, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। फिलिप्पुस और अन्द्रियास कम बोलने वाले व्यक्ति थे, परंतु परिश्रमी थे। वे सदा ही कुछ न कुछ करते रहते थे। अन्द्रियास ही शमौन पत्रस को यीशु के पास लाया था। यीशु ने फिलिप्पुस से यह प्रश्न क्यों किया? यह बहुत अद्भुत बात है। क्या वह उससे राय पूछ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए? यीशु किसी की राय पर नहीं चलता था, तब उसने फिलिपुस से यह प्रश्न क्यों किया? शायद आप भी ऐसा सोच सकते हैं। हम आगे देखते हैं यूहन्ना 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है, परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। मित्रों, यीशु फिलिपुस को परख रहा था। फिलिपुस देख रहा था कि जन समूह में लगभग 15,000 मनुष्य तो होंगे, स्त्रियों और बच्चों सबको गिनते हुए। फिलिपुस के मन में यीशु के चमत्कार का विचार भी नहीं आया था। तब हम आगे देखते हैं यूहन्ना 6 उसके 7 पद में लिखा है, फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। मेरे प्रिय मित्रों, फिलिपुस को कैसे पता था कि उनके पास केवल 200 दिनार ही थे? संभवतः यहूदा ने उन्हें बताया था कि उनके पास 200 दिनार हैं। अन्य सुसमाचार वृत्तांतों में शिष्यों ने यीशु को परामर्श दिया कि वह जन समूह को विदा कर दे, जिससे कि वे घर लौटते समय रास्ते में अपने लिए कुछ खरीद कर खा लें। परंतु लूका के अनुसार, जो 9 अध्याय उसके 12 से 15 पद में है, यीशु ने कहा कि वे उन्हें भोजन उपलब्ध कराएंगे और शिष्य उनकी सेवा करेंगे। मित्रों, यह कलीसिया के अगुओं के लिए एक अच्छा सबक है। उन्हें भूखे मनुष्यों को आत्मिक भोजन स्वयं देना चाहिए, इसकी अपेक्षा कि बैठकर निर्देश दें। अब क्योंकि फिलिपुस और अन्द्रियास साथ थे, अतः अन्द्रियास कहता है, हम यूहन्ना 6 उसके 9 पद में पढ़ते हैं, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? लगभग 15,000 मनुष्यों का समूह और जो भोजन अन्द्रियास की जानकारी में वहां था वह केवल एक मनुष्य का भोजन था, 5 रोटी और 2 मछली। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5,000 के थे बैठ गए। अतः यीशु की शिष्य समिति का अंतिम निर्णय यही था कि उस जन समूह को भोजन करवाना असंभव है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में एक उद्धार करता है यीशु, तब सब कुछ संभव है। मार्कुस के अनुसार, जब उन्हें शिष्यों ने बैठने के लिए कहा तब वे अपने अपने जानकारों के साथ बैठ गए, अर्थात छोटे छोटे समूहों में वे एक दूसरे के बगल में बैठ गए। उनकी वेशभूषा से वे पहचाने जा सकते थे, दूर से देखने में वे बड़े ही रंगीन दिख रहे होंगे। प्रभु यीशु का काम व्यवस्थित तरीके से होता है और यहाँ पर भी उसने ऐसा ही किया कि लोगों को क्रमवत तरीके से बैठने को कहा। तब हम आगे देखते हैं यूहन्ना 6 अध्याय के 11 से 13 पद में लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। सो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यीशु के आ जाने से आशीषें बरसने लगती हैं। 5 रोटी और 2 मछलियों पर यीशु की आशीष थी, अतः सब खाकर तृप्त हो गए और उस समय वे बहुत खाते थे और उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने पहली बार पेट भर कर भोजन किया था। यीशु का काम आवश्यकता से अधिक अच्छा होता है। उनके पास 12 टोकरे भर कर भोजन बच भी गए जिसे शिष्यों ने इकट्ठा किया था। हम यूहन्ना 6 अध्याय उसके 14 से 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब जो आश्चर्यकर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। मित्रों, ध्यान दें कि जन समूह यीशु के पीछे रहता था क्योंकि वह चमत्कारी था, वे उसे अपना राजा बनाना चाहते थे। अतः यीशु वहां से चला गया। वह निसंदेह जन्म से ही राजा था, परंतु उसका मार्ग भिन्न था जो लोग नहीं जानते थे। अब हम आगे देखते हैं, यीशु पानी पर चलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 16 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, फिर जब संध्या हुई तो उनके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जाना चाहते थे। मित्रों, अन्य सुसमाचार वृतांतों के अनुसार यीशु ने शिष्यों को झील पर भेज दिया और वह स्वयं एक पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया। वहां पर अधिक पहाड़ होने के कारण गलील सागर पर प्रचंड वायु प्रवाह होने की अधिक संभावना बनी रहती थी। अभी वे लोग लगभग आधी दूरी तक ही पहुंचे थे कि उन्होंने किसी को पानी पर चलते हुए देखा और वे भयभीत हो गए, और वह यीशु था। यीशु उनके पास पानी पर चलकर क्यों आया? क्योंकि वे आंधी में फंसे हुए थे। वह आज भी जीवन की आंधी में हमारे पास ही होता है। संकट में ही हमारा मन यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि यीशु नाव में आ गया था, उनकी तट से दूरी समाप्त हो गई थी। अब चिंता नहीं कि वे पार हो पाएंगे या नहीं। मेरे मित्रों, आज हम में से कई लोग अपने उस जीवन की आंधी में फंसे हुए हैं। वे उस पार जाना तो चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपके उस जीवन की आंधी में चलकर आना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपके जीवन में आए और आपको उससे छुटकारा दें। जिस प्रकार शिष्य डरे और सहमे हुए थे, आंधी से परेशान थे और उन्होंने यीशु को देखा और उन्हें भी संदेह हुआ कि कहीं यह भूत तो नहीं, लेकिन हम पाते हैं कि जब उन्होंने उसे आते हुए देखा वे डर गए। फिर उसने उन्हें जवाब दिया कि मैं हूं। अर्थात जब यीशु उनके पास आया, नाव पर बैठा, तो हम पाते हैं कि वे उस तट पर पहुंच गए जहां उन्हें जाना चाहिए था। आज हम भी यदि अपने जीवन के उस आंधी में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं, अपने जीवन में उसे आने देते हैं, तो निश्चित रूप से वह हमें भी हमारे तट पर पहुंचा देगा। लेकिन सवाल है कि क्या हम उसे अपने जीवन में आने देंगे? क्या हम उसे अपने जीवन में आते हुए देखकर डर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसे दरवाजे तक आने देते हैं, फिर वहां से उसे वापस भेज देते हैं। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 20 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा और वह मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज वह आपके जीवन में आना चाहता है, आपके हृदय के उस घर में आना चाहता है, आपके साथ भोजन करना चाहता है, वो आत्मिक आशीषें बांटना चाहता है। क्या आप अपने हृदय के द्वार को खोलकर उसे आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं? आज आपको निर्णय लेना है। जिस प्रकार शिष्यों ने उसे आने दिया, डरे नहीं और वे तट पर पहुंच गए, आज वह भी आपके जीवन को तट पर पहुंचा सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के निकटता में उससे माफी मांगे, अपने गलतियों को स्वीकार करें और उससे कहें कि प्रभु, मैं इस आंधी से, इस बुराई से बाहर निकलना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें, मेरे जीवन में आए और इस नौका को आप चलाएं, इस नौका के चालक आप बन जाएं और देखें कि निश्चित रूप से प्रभु आपके हर एक तकलीफों से आपको आजाद करेंगे, आपके जीवन में शांति देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने हमसे फिर से एक बार बातचीत किया है कि आप हमारे इस आंधी रूपी नाव में आना चाहते हैं, इसे शांत करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमें उस लक्ष्य पर पहुंचाना चाहते हैं। हमारी विनती है हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, पिताजी आप उनके हृदय, उनके विचार, उनके भावनाओं को समझते हैं और जानते हैं। आपके सामने कुछ भी ऐसी बातें नहीं जो छुपी है। प्रभु जी आप उनकी सहायता करें ताकि उनके जीवन की भूचाल, आंधियां और तकलीफें आप में हो करके दूर हो जाए। आप उनके चालक बन जाइए, आप उनके संचालक बन जाइए, आप उनके उद्धारकर्ता बन जाइए ताकि वे अपने जीवन में आपको जगह दे सकें। धन्यवाद प्रभु हम सबको आशीष देने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
उसका ही